मोदी सरकार ने साल 2019 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट में पर्यावरण को लेकर क्या बातें कही गई हैं, यही समझने के लिए आज हम अपने इस स्पेशल पॉडकास्ट में स्वतंत्र पत्रकार हृदेश जोशी के आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। हृदेश क्विंट हिंदी के लिए लिखते हैं कि पर्यावरण पर फीका रहा वित्त मंत्री का बजट भाषण। 5 साल पहले मोदी सरकार का पहला बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने भाषण में 4 बार क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल किया। जेटली ने क्लाइमेट चेंज को एक वास्तविकता बताया और कहा कि सभी को मिलकर इस खतरे से लड़ना होगा। 10 जुलाई 2014 के अपने बजट भाषण में अरुण जेटली ने जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का जिक्र करते हुए करीब 100 करोड़ रुपए का नेशनल एडेप्टेशन फंड बनाने की बात की। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि 5 साल बाद जेटली की उत्तराधिकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में क्लाइमेट चेंज का जिक्र एक बार भी नहीं किया। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज दुनिया भर से आ रही खबरों में जलवायु परिवर्तन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के तमाम हिस्सों में करोड़ों छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता इस साल की शुरुआत से सड़कों पर हैं और ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए आपातकाल घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मई के पहले हफ्ते में ब्रिटेन की संसद ने इस मांग को स्वीकार किया और वो क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करने वाला पहला देश बना। पिछले 19 जून को साइंस पत्रिका साइंस एडवांसेस प्रकाशित रिसर्च में कहा गया कि हिमालय ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है, लेकिन हिमालय का जिक्र बजट भाषण में औपचारिकता के लिए भी नहीं किया गया। इस पत्रिका में छपी एक और रिसर्च बता रही है कि ग्लोबल वार्मिंग अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो हीट वेव्स यानी लू की सबसे अधिक मार दक्षिण एशिया पर होगी और भारत में सबसे अधिक लोगों को खतरा है। एक्शन एड के ग्लोबल लीड और जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हरजीत सिंह का कहना है, हम क्लाइमेट चेंज के खतरों को लेकर दुनिया भर में आवाज उठा रहे हैं। भौगोलिक स्थिति, खेती की वर्षा पर निर्भरता, समुद्र तट रेखा की लंबाई और विशाल आबादी को देखते हुए भारत के लिए इसके खतरे सबसे अधिक हैं। वित्त मंत्री के भाषण में क्लाइमेट चेंज का जिक्र भी ना होने से संकट से लड़ने में सरकार की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जलवायु परिवर्तन के संकट को समझना और गंभीरता से इसे लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सीधे तौर पर विकास दर से जुड़ी हुई है। सरकार देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करती है जो कि एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन चक्रवाती तूफान, सूखा या बाढ़ जैसी आपदा आपको कई साल पीछे धकेल देती है। इस समस्या को समझते हुए हरजीत सिंह कहते हैं, एक प्रतिष्ठित अमेरिकी साइंस जर्नल में इसी साल छपी रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन के खतरे गरीब और विकासशील देशों को और गरीब बना रहे हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग का असर ना होता तो भारत की जीडीपी आज के मुकाबले 30% ज्यादा होती। मामला सिर्फ जलवायु परिवर्तन तक सीमित नहीं है, गंगा की सफाई जैसे मुद्दों पर भी निर्मला सीतारमन चुप ही रहीं, जबकि इससे पहले के बजट भाषणों में इस पर प्रमुखता से कहा जाता रहा है। वित्त मंत्री ने गंगा की सफाई कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं कहा और नदी का जिक्र सिर्फ जल विकास मार्ग को लेकर किया, जिसे बनाने की बात अरुण जेटली के भाषण में 5 साल पहले हुई थी। इसी तरह पर्यावरण से जुड़े दूसरे मुद्दों पर निर्मला सीतारमन चुप ही रहीं, जबकि सिर्फ 5 महीने पहले फरवरी में काम चलाऊ मतलब इंटरिम बजट पेश करते हुए पीयूष गोयल ने इन मुद्दों पर कहीं अधिक भरोसा जगाने वाला भाषण दिया था। पिछले 3 सालों में वायु प्रदूषण को लेकर भारत के लिए चिंताजनक खबरें सामने आई हैं। लैंसेट और स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर एसओजीए रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत में हर साल 12 लाख लोग वायु प्रदूषण से हो रही बीमारियों से मर रहे हैं। सरकार ने इन्हें विदेशी संस्थाओं की अलार्मिस्ट रिपोर्ट कहा, लेकिन पिछले साल दिसंबर में वो खुद केंद्र सरकार की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने इन रिपोर्ट्स की पुष्टि की। बड़े इंतजार के बाद इसी साल सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP की घोषणा की, लेकिन इसका कोई फायदा होता नहीं दिखता क्योंकि इस मुहिम में साल 2024 तक देश के करीब 100 महानगरों में वायु प्रदूषण का स्तर 30% घटाने को कहा गया है, जो प्रदूषण की भयावहता को देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरा ही कहा जाएगा। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस प्रोग्राम में अधिकारियों को कार्रवाई के लिए कोई कानूनी ताकत नहीं दी गई है। नवंबर आते आते आसपास के राज्यों में फसल की खूंटी जलाने से दिल्ली और NCR में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हैरान करने वाला है कि वित्त मंत्री ने साफ हवा के लिए कोई हेल्थ इमरजेंसी जैसी बात नहीं कही। सौर ऊर्जा में रूफ टॉप सोलर में तरक्की नहीं के बराबर है, लेकिन वित्त मंत्री ने कुछ नहीं बताया कि इसे कैसे दुरुस्त किया जाए। बैटरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जरूर कहा, लेकिन जब तक बैटरियों के लिए सोलर चार्जिंग स्टेशन बहुतायत में नहीं होंगे, बैटरियां थर्मल पावर से चार्ज होती रहेंगी, जिससे कूल कार्बन उत्सर्जन में कोई कमी नहीं आएगी और बैटरी कारें शोपीस बनकर रह जाएंगी। जल संकट पर सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं कि साफ पानी न मिलने से हर साल 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। इस साल जून में ग्राउंड वाटर 54% कम हो गया था। प्रधानमंत्री ने 2024 तक सभी घरों में नल से जल पहुंचाने का वादा किया है, लेकिन जानकारों को डर है कि कहीं ये स्कीम ठेकेदारों के हत्थे चढ़कर न रह जाए। वित्त मंत्री की चुप्पी को समझने के लिए जानना पर्याप्त होगा कि गंगा की सफाई शुरू किया गया नमामि गंगे अभियान कुछ खास हासिल नहीं कर पाया है, बल्कि कई जगहों पर गंगा और अधिक प्रदूषित हुई है। अधिक निराशा वाली बात यह है कि इस बजट में सरकार ने नमामि गंगे अभियान के फंड में 65% से अधिक कटौती कर दी है। अलग अलग मंत्रालयों के कई विभागों को मिलाकर सरकार ने जल शक्ति नाम से मंत्रालय जरूर बना दिया, पर उसके आवंटित फंड को भी करीब 10% कम कर दिया गया है।